नमस्कार कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। इसके अलावा हमारी नजर रहेगी खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी, और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए। तो परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं सायरा मुश्तबा। सायरा, कैसा गुजर रहा है आपका दिन?
बहुत अच्छा। नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स, एंड आई एम श्योर कि अब लिसनर्स का भी जो दिन है वो तो अच्छा गुजरा होगा, बट आने वाली शाम भी अच्छी होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गिव एन अपडेट इन आवर हाफ एन आवर न्यूज मैगजीन परिक्रमा, जिसमें ऑफ कोर्स सरफिरोजी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेज शो। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी ट्रू टू द स्पिरिट ऑफ आवर शो, जाएंगे देश के मुख्तलिफ हिस्सों में, जानेंगे क्या कुछ खास स्टोरीज हैं, व्हाट स्पेशल स्टोरीज आवर कॉरेस्पोंडेंट्स हैव फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। All of that in the next roughly half an hour, but first let's start with the headlines. Prime Minister meets eminent economist at Niti Aayog ahead of Union Budget.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे।
Election Commission team reviews poll preparedness in Jharkhand for upcoming assembly elections.
सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित की।
IMD forecast rain in several parts of the country till Monday. Army called in for rescue and relief operation in flood affected areas of Uttar Pradesh.
और विमल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स और पुरुष डबल सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे।
And now it's time for Dateline India, in which we discuss some important topics, and today we are discussing World Population Day. Choosing the right size for your family is choosing the right path for the planet. Today we observe World Population Day. This day is observed on the 11th of July every year. The day serves as a reminder that our growing population presents both challenges as well as opportunities that require our attention and proactive measures.
और जैसा कि सायरा ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस आज यानी 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा विकास एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। ये दिन पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था।
Yes, it is speculated. Some people say it was first celebrated in 1990. Others also say that the origins of World Population Day date back to 11th of July 1987, when the world's population reached approximately 5 billion. This milestone sparked global interest in population growth and its implications. In 1989, the UN Development Programme established World Population Day to address concerns related to population growth, including maternal health, poverty, economic hardships, and many other difficulties. By a resolution in December 1990, the UN General Assembly decided to continue observing World Population Day to enhance awareness of population issues, including their relation to the environment and development.
और सायरा, इस साल विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है किसी को भी पीछे न छोड़े, सभी को गिने, जो ये सुनिश्चित करने के लिए डेटा कलेक्शन के महत्व पर जोर देता है कि भले ही किसी इंसान का किसी भी तरह का बैकग्राउंड हो, वो किसी भी राष्ट्रीयता से आता हो, उसका ज्योग्राफी या सामाजिक आर्थिक अंतर की परवाह किए बिना सभी को जनसंख्या गणना में शामिल किया जाए।
Yes, as UN Secretary General Antonio Guterres said, that this year's theme highlights the importance of investing in data collection to understand issues, tailor solutions, and drive progress. Financial investment is also crucial. We urge countries to leverage the summit of the future this year to unlock affordable capital for sustainable development.
और सायरा, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 1 अरब 20 करोड़ से ज्यादा लोग युवा हैं, यानी जिनकी उम्र 15 से 24 साल है, और प्रतिशत की बात करें तो दुनिया भर की आबादी का 16% हिस्सा युवा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सतत विकास के लिए हम लोग युवाओं में, जो देश की सरकारें हैं, युवाओं में निवेश करें, क्योंकि यही लोग हैं जो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आगे चलकर बहुत बड़ा योगदान देंगे। आबादी के इस वर्ग के लिए जरूरी है कि अच्छी शिक्षा इन तक पहुंचाई जाए, स्वास्थ्य इनका अच्छा हो और रोजगारों के अवसरों तक इनकी पहुंच बने।
Yes, absolutely, Sir Firozi. As you said, that a major chunk of the population worldwide is the youth, and uski apne jo hai pros and cons dono hai.
Bilkul.
Because obviously pros to zyada ye hai that we are a young world, we are a young country, so we know that we have immense potential in terms of human resources. And apart from that, youth is also of the fertile age. So agar youth mein awareness nahi hai, so they can also contribute to probably even more population growth if there is not right awareness among them. So yes, we have to take care of that. And global population is expected to continue increasing steadily, with projections indicating that it may reach around 9.7 billion by 2050 and possibly peak at nearly 10.4 billion in the mid-2080s, according to the UN. This represents the growth of almost 2 billion people within the next 3 decades.
और UNFPA की 2023 स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो भारत की जनसंख्या 1,42,00,000,000 करीब होने का अनुमान है, जो कि चीन की जनसंख्या को भी पछाड़ने वाली है, और इससे तीव्र वृद्धि की कई महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। विशेषज्ञ इस वृद्धि का श्रेय पिछले दशकों की जनसंख्या गति को देते हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जनसंख्या 2050 के आसपास कम हो जाएगी, यानी कि अभी जनसंख्या बढ़ रही है, पर आगे जाकर ऐसा अनुमान है, जैसे कि आपने कहा कि अगर जो यूथ है उसके बीच अगर सही अवेयरनेस आ जाए तो इसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 के आसपास जनसंख्या कम होगी, और ये प्रवृत्ति वैश्विक आबादी पर भी लागू होगी, यानी ग्लोबल पॉपुलेशन में भी कमी आने के आसार हैं, अनुमान है। जो अगर आबादी का इस वक्त हम बात करें तो वर्तमान में 8 अरब से ज्यादा विश्व की जनसंख्या है।
Yes, and today Union Health Minister Jagat Prakash Nadda unveiled the Sugam Model Initiative for Family Planning on the occasion of World Population Day in New Delhi. The Sugam Model is designed for healthy timing and spacing of pregnancies for the well-being of both mother and child. Holding a virtual meeting with health and family welfare departments of various states, Mr. Nadda highlighted that today serves as the opportunity to introspect about the past, present and the future of family planning in India. He added that the upcoming strategies must be implemented with the data from National Family Health Survey and keeping special attention on states with high population rates. The minister also released the new family planning information, education and communication material.
विश्व की जनसंख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर प्रजनन आयु तक जीवित रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के कारण हुई है, और इसके साथ प्रजनन दर में बड़े बदलाव, शहरीकरण में वृद्धि और प्रवासन में तेजी आई है। इन सभी कारकों का आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। वे आर्थिक विकास, रोजगार, आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा जैसे कारकों पर प्रभाव डालेंगे।
And Sir Firozi, to more sustainably address the needs of individuals, policy makers must understand how many people are living on the planet, where they are living, how old they are and how many people will come after them.
और आज के दिन की सायरा बात करें तो ये हमें ग्लोबल लेवल पर एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम बढ़ती जनसंख्या से संबंधित जो हमारी इतनी चुनौतियां पेश आ रही हैं, हमारे पास संसाधन नहीं हो पा रहे हैं, लोगों तक संसाधन एक तरह से पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीजों पर हम लोग बैठकर सोचे। इसमें परिवार नियोजन तकनीक, प्रजनन स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी परिवर्तन और ये चीजें कैसे हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित कर रही हैं, इन सब चीजों पर सोचने के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि विश्वव्यापी जनगणना में सभी लोगों की सटीक गिनती सुनिश्चित करना हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस का लक्ष्य रहा है। जनसंख्या आवश्यकताओं को समझने और दीर्घकालिक समाधान को विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं को ये जानकारी जानना आवश्यक है।
सो लेट अस कम टुगेदर टू मोटिवेट एंड क्रिएट अवेयरनेस एंड सपोर्ट द पॉलिसीज दैट एंश्योर प्रॉस्पर एंड इक्विटेबल वर्ल्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन्स।
और याद रखिए, रहेगा छोटा परिवार तो होंगी खुशियां अपार, और यही है हम सभी की प्रगति का आधार।
As India advances, India's neighborhood is also benefiting from development. Nearly 100 Sri Lankan Administrative Service officers have attended capacity building programs conducted by India's National Center for Good Governance. Speaking exclusively to our special correspondent, Secretary of Department of Administrative Reforms and Public Grievances, V. Srinivas said that officers of Sri Lanka's administrative services have attended training at NCGG at Mussoorie and Delhi. Let's hear this interview.
India's neighborhood policy has gone from strength to strength with every step that it has taken over the last 10 years. An important component of this neighborhood first policy has been development cooperation, of which capacity building has assumed a huge space. A 5-member delegation has arrived in Sri Lanka to take forward this development cooperation in the space of capacity building. The delegation led by Secretary to the DARPG, Mr. V. Srinivas, who is also the Director General for NCGG. We thank you, sir, for giving us time from your busy schedule. Sir, to begin with, your delegation, it's a 5-member delegation which has come to Sri Lanka, and you have had several meetings with key officials as well as Prime Minister of Sri Lanka, Mr. Dinesh Gunawardena. Could you elaborate more on your visit?
At the outset, we would like to thank the government of Sri Lanka for inviting us to Colombo for a 3-day visit to discuss the roadmap forward for collaboration in personal administration and governance. The interactions were positive, and it was a very highly successful visit in that both sides could reach a broad agreement in terms of how the contours of this cooperation in personal administration and governance will be taken up. Institutions. The Sri Lankan side has expressed a lot of interest in the new areas of digitization, as also in terms of recognizing meritocracy through the Prime Minister's Award Scheme for Excellence in Public Administration. They also shared with us in their discussions a number of best practices and a lot of young officers who have brought in innovative practices, made presentations during the visit. And I've had the opportunity to interact with about 250 Sri Lanka Administrative Service officers as part of the visit, in addition to meetings with the Honorable Prime Minister of Sri Lanka as well. In our interactions with almost 100 alumni of the National Center for Good Governance, officials who had attended the programs, they expressed satisfaction that the outcomes of the training programs had further enhanced their cognitive abilities as also their understanding of the next generation administrative reforms. Many of them had spoken about successful areas where replication is also possible.
A training here in Sri Lanka itself. Do you see any particular course that India is offering which could benefit these people in enhancing their skills? Is there anything out of the entire gamut of courses that we are offering in NCGG that could benefit them?
Yes, there are a number of areas in which they have expressed interest. We did share a major technology platform for effective redressal of public grievances, that is the Centralized Public Grievances Redress Mechanism portal, which is a foundation for smart government, in which many officers showed interest. Effective redressal of public grievances is actually the foundation stone for a democracy, and citizens' voices can be heard in an effective and timely manner, and grievance redressal can be pursued. One of the big areas which they showed a lot of interest was improving service delivery. So improving service delivery through strong digital platforms, through integrated service delivery portals, as also improving the quality of portals, that is in terms of the area of service delivery.
So if we look at the India-Sri Lanka relations in particular here, there was an understanding that there could be a long-term framework that could be evolved and developed. As I understand, it is still being worked out and it is almost in the finalization stages. Do you see any particular direction in which this framework could go?
Yes, it is a positive direction in which this framework is headed, and it is envisaged to have at the start a 5-year capacity building program has been envisaged with about 9 to 10 programs for Sri Lankan civil servants being conducted per annum, and discussions on how these programs would be structured for field administrators separately, for policy-making ministries separately, was discussed. In fact, the Sri Lanka Administrative Service has about 2,350 officers from various grades, the selection grade, grade 1, grade 2 and grade 3. In our discussions, we suggested to them that the selection grade and grade 1 officers are most suitable for participating in the mid-career programs at the NCGG. For many of these officers, the exposure to NCGG would be a structured institutional arrangement, which would perhaps be one of their first international exposure to a high-quality, world-class institute. And they would be interacting with senior officials of the Government of India, as also with public policy practitioners and experts on the subject. And as I said, it's a new knowledge that they would be acquiring in terms of next-generation administrative reform.
Thank you so much for giving us your time, sir, and for elaborating the discussion that you have had. Thank you, sir.
Thank you very much.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सायरा, कभी आप जगन्नाथ रथ यात्रा का हिस्सा बनी हैं?
सर फिरोजी, मेरा ये सौभाग्य अभी तक तो नहीं है, बट आई एम श्योर आपकी ये इशारा कुछ इस तरह है दैट टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ वर्चुअल टूर ऑफ द यात्रा।
बिल्कुल, आपको और अपने श्रोताओं को अब लेकर चल रहे हैं ओडिशा के पुरी में, जहां आज हेरा पंचमी की नीतियों के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। रथ यात्रा के पांचवें दिन श्री गुडिंचा मंदिर के सामने हेरा पंचमी की कई धार्मिक प्रक्रियाएं की जाती हैं। पुरी में आगामी सोमवार को बाहुड़ा यात्रा यानी महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा के श्री मंदिर लौटने का उत्सव मनाया जाएगा। इस पर पेश है कटक से ये रिपोर्ट।
हेरा पंचमी के लिए पूरी श्री मंदिर प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हेरा पंचमी का अर्थ है देखने की पांचवी रात। ये रथ यात्रा के पांचवें दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि जब भगवान श्री जगन्नाथ, प्रभु बलभद्र और देवी सुभद्रा अपनी मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर जाते हैं, तब देवी लक्ष्मी को अपने पति श्री जगन्नाथ से अलग होने का दुख होता है। इस दुख से व्यथित होकर देवी लक्ष्मी उन्हें ढूंढने के लिए श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करती है। आज देवी लक्ष्मी की मूर्ति को बड़े धूमधाम और समारोह के साथ श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर ले जाया जाएगा। ये यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति उनके प्रेम और चिंता का प्रतीक है। देवी लक्ष्मी जब गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगी, इस दौरान देवी लक्ष्मी गुस्से में प्रभु श्री जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़ने की परंपरा है, जिसे हेरा गोहरा कहा जाता है। इसके बाद वो वापस श्री मंदिर लौट आएंगी। वहीं महाप्रभु के बाहुड़ा यात्रा के लिए तैयारियां चल रही है। आगामी सोमवार को प्रभु अपने भाई बहन के साथ श्री मंदिर लौट आने का उत्सव मनाया जाएगा। हेरा पंचमी पूरी की धार्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सदियों से चली आ रही है। ये त्यौहार न केवल भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के प्रेम और समर्पण को भी प्रकट करता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी समाचार कटक से मैं इतिश्री सिंह।
And now it's time for Azadi Ka Safar.
In today's episode, we remember nationalist Chettur Sankaran Nair, who was born on the 11th of July 1857 in Mankara, Palakkad district on the Malabar coast.
A lawyer by profession, Nair presided over the first provincial conference in Madras in 1897. In the same year, during the annual session of the Indian National Congress at Amravati, Nair gave the presidential address.
Nair referred to the high-handedness of the foreign administration, called for reforms, and asked for self-government for India. In 1900, Nair was elected a member of the Madras Legislative Council. In 1908, he became a permanent judge in the High Court of Madras and held the post till 1915. He was knighted in 1912 and became a member of the Viceroy's Council in 1915 with charge of the education portfolio.
In 1919, as member, he wrote two famous minutes of dissent in the dispatches on Indian constitutional reforms, pointing out the various defects of British rule in India and suggesting reforms. For an Indian to offer such criticism and make such demands was incredible in those days.
He was the president of the Indian Central Committee to cooperate with the Simon Commission. The committee prepared a well-argued report asking for dominion status for India. When the vice-regal announcement granting dominion status as the ultimate goal for India came, Nair retired from active politics. Nair was a patriot who worked for the welfare of his people till his death on the 24th of April 1934. EIR News salutes the great Indian.
We also remember freedom fighter Baba Kanshiram, who was born on the 11th of July 1882 in district Kangra, Himachal Pradesh. he preached the message of Mahatma Gandhi to the nation and composed songs and poems in Pahari language to inspire the youth to join the freedom struggle.
Kanshiram was fond of music and poetry, and he started to write songs and poems in Pahari language from an early age. He went to Lahore for employment, where young Kanshi came in contact with freedom fighters. Kanshi developed good relations with well-known freedom fighters, including Sardar Ajit Singh, uncle of Bhagat Singh, Lala Hardayal, and Lala Lajpat Rai. He witnessed the Jallianwala Bagh massacre in 1919 and jumped into the freedom struggle wholeheartedly.
Kanshiram was arrested in his village Daba Siba in 1920 and was lodged in Dharamshala jail with Lala Lajpat Rai. After his release in 1922, he moved again to Lahore and participated in the session of the Indian National Congress at Lahore in 1929, which declared independence to be the goal of the Indian struggle.
The British again put Kanshiram behind the bars for his famous poem, Angrez Sarkar Da Tigga Par Dhyare, The British Government Is On Her Last Legs. Between 1930 and 1942, Kanshiram was arrested 9 times by the British. Sarojini Naidu called him the Bulbule Pahad, the Nightingale of the Hills.
During the last days of his life, he undertook a vow to wear black clothes till India attained freedom. The black clothes remained with him till the last day of his life on the 15th of October 1943.
And in business news today, Indian equity benchmark indices, Sensex and Nifty dropped 0.03% and hence ended flat after opening high today. Both indices started to lose as investors await US inflation data. The Sensex slid 27 points to close at 79,897, while Nifty shed 9 points to close at 24,316. In global crude market, Brent crude is trading at $85.43 per barrel. WTI crude is trading at $82.36 per barrel. In global commodity exchange for 5th of August 2024 contract, gold is trading at 72,805 rupees per 10 grams, while silver for 5th September 2024 contract is trading at 93,343 rupees per kg when reports last came in. And what is the buzz that we have from the world of sports?
जी सायरा, बात कर रहे हैं फुटबॉल की, जहां कोलंबिया ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दूसरे सेमीफाइनल में उरुग्वे को 1-0 से हराकर कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उरुग्वे के गेंद पर बेहतर कब्जे के बावजूद वे मौके को गोल में बदलने में नाकाम रहे। कोलंबिया के लिए जेफरसन लेमा ने 39वें मिनट में एकमात्र गोल किया। इंटरवल से ठीक पहले दाएं विंगर डेनियल मुनोज को लाल कार्ड मिलने के बाद कोलंबिया ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल खेला। पिछड़ने के बावजूद कोलंबियाई टीम मजबूत रही और पूरे मैच में उरुग्वे को दूर रखा। इस महीने की 15 तारीख को फाइनल में कोलंबिया का सामना मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।
And if you talk about Wimbledon tennis, Kazakhstan's Elena Rybakina will take on Barbara Krejcikova of Czech Republic in the women's singles semi-final this evening. Four-seeded Rybakina advanced to the last four stage with a 6-3, 6-2 win over Ukraine's Elena Svitolina, while Krejcikova reached the last four win over Latvian Helena Ostapenko. In the other semi-final, seven-seeded Italian Jasmine Paolini will face Croatia's Donna Vekic. It will be Vekic's first appearance in the semi-final of a major championship.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया में कदम रखा या इस दुनिया से अलविदा हुए। तो सायरा, कहां से शुरू कर रहे हैं?
यस, वी आर रिमेम्बरिंग भीष्म साहनी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे, अ वेरी एक्सलेंट राइटर, प्ले राइट इन हिंदी एंड एन एक्टर, मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल एंड टेलीविजन स्क्रीन प्ले तमस, अ पावरफुल एंड पैशनेट अकाउंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर एंड साहित्य अकादमी फेलोशिप इन 2002।
और सायरा भले ही इन्होंने साहित्य जगत में बहुत नाम कमाया हो, पर इनकी शुरुआत की बात करें तो इनका जो करियर था वो टीचिंग से शुरू हुआ था, फिर इन्होंने पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया और जैसा कि आपने कहा ये अभिनेता भी रह चुके हैं, इन्होंने इप्टा नामक मंडली में अभिनय का कार्य किया.
Yes, and in fact, many of his plays were adapted by film director, screenwriter, novelist and journalist Khwaja Ahmad Abbas as well, and famous among them was Bhoot Gari. As an actor, he appeared in several films, including Saeed Mirza's Mohan Joshi, Hazir Home, Tamas, Kumar Shahani's Qasba, Bernardo Bertolucci's Little Buddha, and Aparna Sen's Mr. and Mrs. Iyer as well. And आपने इप्टा की बात करी सर फिरोजी, तो ही लेफ्ट बॉम्बे फॉर पंजाब वेर ही वर्कड ब्रीफली एज अ लेक्चरर फर्स्ट इन कॉलेज एट अम्बाला एंड देन एट हासा कॉलेज इन अमृतसर. बट एज अ रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन विद इप्टा ही लेफ्ट कांग्रेस एंड ज्वाइंड द सीपीआई लेटर.
और सायरा इन्होंने साहित्य जगत में जो योगदान दिया इसके लिए इन्हें न सिर्फ अपने ही देश में भारत में पुरस्कृत किया गया बल्कि इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1983 में प्रदान किया गया. इसके अलावा एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से 1970 में इन्हें लोटस पुरस्कार भी दिया गया और बाकी 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और साथ ही 1998 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया.
Yes, so if we have talked about his work Tamas, then why not listen to a dialogue from the screenplay of Tamas?
बिल्कुल.
मैं आप सबसे बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सबसे अपील करता हूँ कि हम आपस में लड़ना बंद कर दें, वरना ये फिरका परस्त रियासतदान मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बर्बाद कर देंगे.
Today we are also remembering famous writer Jhumpa Lahiri on her birthday today. British-American author known for her short stories, novels and essays in English and more recently in Italian as well. Her debut collection of short stories, Interpreter of Maladies, won the Pulitzer Prize for Fiction and the Penn Hemingway Award for her first novel, The Namesake, that was also adapted into a popular film of the same name. The Namesake was a New York Times notable book, a Los Angeles Times Book Prize finalist, and was made into a major motion picture. Another writer whose birthday is today is Amitabh Ghosh. He won the 54th Gyanpeeth Award in 2018, which is India's highest literary honor. Ghosh's ambitious novels use complex narrative strategies to probe the nature of national and personal identity, particularly of the people of India and South Asia. He has written historical fiction and non-fiction works discussing topics such as colonialism and climate change. And unki bahut hi famous novel hai Shadow Lines. I'm sure that if those of you listeners who haven't read it, please do read it. It's a wonderful work that questions politics and identity. और किसी का बर्थडे जो बहुत खास एक हीरो रहे हैं.
बिल्कुल सायरा, बॉलीवुड में कई एक्टर ऐसे हुए हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बन गए थे. उन्हीं एक्टर्स में कुमार गौरव का नाम भी शामिल है. पहली फिल्म से सफलता का स्वाद चखने वाले कुमार का आज जन्मदिन है, ये आज 68 साल के हो जाएंगे. अपनी पहली ही फिल्म से धमाल मचाने वाले कुमार गौरव ने बाद में गूंज, जरूरत, सियासत, गैंग, कांटे, एक से भले दो, नाम, दिल तुझको दिया जैसी फिल्मों में अभिनय किया था.
ये जमीन जा रही है, आसमान जा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां जा रहा है. ये जमीन जा रही है, आसमान जा रहा है, साथ मेरे ये सारा.
Today we are also remembering Tuntun. That was her screen name, but her real name was Uma Devi Khatri, and a very known singer of yesteryears and also a comedian. She was Hindi cinema's first ever female comedian, and the section does not cite any sources though, but it is very popular that Tuntun ki to jo hai keh sakte hain ki bahut saari filme aayi hain, but single wali jo na keh sakte hain roop hai bahut kam log jante the. Let's listen to this famous song that was sung by her.
जब तू नहीं था कुछ भी. और इसी अफसाने के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं मैं और सायरा। श्रोताओं इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।